ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दिशतारिणे श्री चैतन्ना मनाविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति शब्दांतिकम् वन्दे अहम् श्रीगुरा श्रीजुता पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टो प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण हम श्रीमद् भागवत से दशम स्कंध अध्याय 35 अध्याय का नाम कृष्ण के वनविहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन अर्थात गोपी गीत। लेकिन रासलीला में जो 31 अध्याय है उनका नाम स्पेशल गोपी गीत है, ये भी गोपी का ही गीत है। तो ये अध्याय का नाम है कृष्ण के वनविहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। गोपी जो गीत कर रहा था वो ये अध्याय वर्णन है। आज 20 और 21 नंबर श्लोक एक साथ पढ़ कर कुन्दो दामो कृत कौतुक बेश गोप गोधन वृत जो मुनायम नन्द सुनु अनखितवत्स नर्मदप्नयीनां बीजहार मन्दवायु उपवाति अनुकूलम् मानो अनमलयो जो स्पर्शेन वंदिन तम उपदेव गणाजी बद्ध गीत बोली पोली बब्रुहु कुंद दामो कृत कौतुक बेश गोप गोधन वृत यमुनायम नंद सुनुआन गीतव वत्स नर्मद प्रणयीनम बीजहार मंद वायु उपवात्योनुकूल मानय अनमलय स्पर्शेन वंदिन तम उपदेव गणाजे बद्ध गीत बोली पोरी बब्रुहु कुंद दाम कृत कौतुक बेश गोप गोधन वृत यमुनायम नंद सुनुआन गीतव वत्स नर्मद प्रणयीनम बीजहार मंद वायु उपवाति अनुकूलम मानय अनमलय स्पर्शेन मंदिन तम उपदेव गणाजे बद्ध गीत बोली पोरी बब्रुहु पद गीत बोली माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य मेरा पिछले दो रही। कुंद चमेली के फूलों की दाम माला से कृत बनाई हुई कौतुक क्रीड़ापूर्ण बेश वेशभूषा गोप ग्वाल बालो द्वारा गोधन तथा गायो द्वारा वृत घिरा हुआ जमुनायम जमुना के तट पर नंद सुनुहु नंद महाराज का बेटा अनघ अनघे हे निष्पाप महिला तब तुम्हारा वत्सह लाडला बेटा नर्मदह मनोरंजन करने वाला प्रणयिनम अपने प्रिय संगियों के बिजोहारो खेल चुका है मंद धीमी वायु वायु उपवाती बहती है अनुकूलम अनुकूल मानयन आदर दिखलाते हुए मलयज चंदन की सुगंध के स्पर्शन स्पर्श से मंदिन प्रशंसा करने वाले तम उसको उपदेव लघु देवता की गणा विभिन्न कोटियों के सदस्य ये जो बद्ध बद्र जंतु वाले संगीत गीत गायन बोली भी तथा उपहार सहित परिवब्रु घेर लिया है। अनुवाद। हे निष्पाप जशोदा, तुम्हारे लाडले नंदनंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वह यमुना के तट पर गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहे हैं। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदीजनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। मेरा विश्वास दूर है। गोपीलोक ये जशोदा माँ को संबोधन कर रहा है। हे निष्पाप जशोदा, तुम्हारे लाडले नंदनंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वह यमुना के तट पर गौ तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन करते हुए खेल रहे हैं। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदीजन के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि गोपिया पुनः ब्रज की महारानी माता जशोदा के आंगन में आई हुई है। दिन भर गौवे चराते तथा खेलने के बाद कृष्ण के वृंदावन लौटने के वर्णन करके गोपिया जशोदा को प्रोत्साहित कर रही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि यह पर जिन उपदेवों का उल्लेख है उनमें गंधर्वगण सम्मिलित है जो अपने दैवी गायन तथा नृत्य के लिए विख्यात है। यह पर तात्पर्य समाप्त। यह श्रीमद् भागवत में अध्याय है कृष्ण के वनविहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। गोपी लोग कृष्ण का लीला स्मरण कर रहा है। जो गोपी लोग गांव का बालिका थी, परही वगैरह कुछ स्कूल कॉलेज गया नहीं, तो उनका आपस में जो बात कर रहा है हम पंडित लोग बैठ के आपस में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इतना गांव का कोई बालिका है, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। गांव के लड़की कितना सारी बातें करते हैं और उसको सुन रहा है कौन? उसको चर्चा करते हैं बड़े बड़े पंडित, बहुत मुनि जुगी, वो लोग इसके और चर्चा करते हैं। इसके अंदर है क्या? तो ये आपस में क्या बोल रहा है? माँ जशोदा क्या बोलते हैं, तुम्हारे लाले नंदन नंदन चामली की माला तथा आपने विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय यमुना नदी के तट पर गांव तथा ग्वाल बाल के साथ अपने प्रिय संगी के मनोरंजन करते खेल रहे हैं। बस इस तरह आपस में बात कर रहा है। तो यह है भागवत। और कल भागवत नहीं है, भागवत में वर्णन किया सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपिया। और गोपिया ने इस तरह बातें कर रहा है तो अर्थात कितना बड़ी बात है। इस तरह बातें है भागवत का सार। कभी कभी लगते हैं इस तरह बात सुन के हमें भक्ति कैसे आगे बढ़ेंगे। ये प्रसंग में प्रभुपाद पहला स्कंद का एक दसम अध्याय द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, वहां पर कृष्ण जब द्वारका से हस्तिनापुर से द्वारका लिए जा रहे थे तो कुरु रमणीगण बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर कृष्ण को देखकर आपस में जो चर्चा कर रहा था वो भी भागवत में वर्णन है। तो कोई बोल सकते हैं आपस में ये लड़की लोग अभी बात कर रहा है, इसके अंदर क्या भक्ति है? तो यहां प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। ये श्लोक है 20 नंबर श्लोक। अन्नमाशित संजल्प उत्तम श्लोक चेतोषम कौरविंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरा। ये देखा सकते क्या इसका? पहला स्कंद 10:1-10:20। अनुवाद है, चुनी हुए छंद से उनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों के की छत पर चरी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्र से वही अधिक आकर्षक थी। भागवत में श्लोक लगता है ये आपस में महिला लोग जो अभी बात कर रहे थे यह वैदिक श्लोक से महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत बहुत मुनि जुगी ऋषि बहुत 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 कठिन कठिन श्लोक उच्चारण कर रहा है, लेकिन यह भागवत में कहते हैं या ये उनमें से ये महिला के आपस में बातें बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त का मुख से इस तरह है। आज ही पूर्ववत का एक लेक्चर सुन रहा था, पूर्ववत बोलते हैं भारत में ओपन टॉयलेट है, तो आज तक वर्तमान सरकार ने इसको खत्म करने जा रहे हैं। तो जो उन्मुक्त जगह में जो मल त्याग करते हैं और कुछ समय के बाद तो सूख जाते हैं, कोई मल सूखा और कोई मल गीला है, और कोई कोई मल ऊपर सूखा और नीचे गीला है। कोई क्या बोल सकता है, अरे ऊपर वाला अच्छा नीचे वाला खराब है। पूर्ववत बोलते हैं ये मल तो मल ही है, इस तरह आप कर्म से ज्ञान, ज्ञान से जोग थोड़ा अच्छा हो सकते, लेकिन भक्ति के दृष्टि सब मल है। तो जब पूर्ववत के ये मल का कहानी कह रहा है, लेकिन ये कहानी पूर्ववत के कारण से मुख से एक बार जब कान में सुनेंगे, कोई जगह मल देखेंगे, मल देखने लगा रहे कर्म योग ज्ञान इसी तरह है, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो ये साधारण महिला के सामान्य बात हो सकते, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात जो प्रभुपाद जी कहा है मल का कहानी वाले, मल एक धूप में ऊपर सूख गया नीचे गीला है, भाई ये भागवत का कहानी क्या, भागवत में मल का कहानी बोलना पड़ेगा क्या? माल धूप में ऊपर सूख जाता है नीचे गीला रहता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद भौतिक जगत के सारे सुख माल की तरह त्याग कर सकते, कितना बड़ा पावरफुल बात है। श्री राधा राज बिहारी ललिता विशाख जी की, कृष्ण बलराम राम लखन सीता हनुमान जी की, पद पवन गौनीता जी की। तो पूर्ववत यह सुंदर तात्पर्य देते हैं, क्यों ये बातें वैदिक स्तोत्र से कहीं अधिक आकर्षक है। ये जो गोपीलक माँ यशोदा के बात आके बोल रहा है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों? पूर्ववत तात्पर्य कहता है, भगवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य, वाङ्मय शब्द अर्थ क्या है? वाक जगमय, मय शब्द है भरा हुआ, जिस तरह जलमय, लोहमय, स्वर्णमय, कृष्णमय, प्रेममय, मय अर्थात भरा हुआ, वाक वाक अर्थात शब्द। तो संधि विच्छेद क म हो गया, वाक जगमय वाङ्मय संधि के स्थान जिस तरह श्रीमत महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु, उसी तरह वाक जगमय वाक वाङ्मय अर्थात शब्द और वाक्य से भरा हुआ। ते वाङ्मय विग्रह, ये श्रीमद भागवत एक विग्रह है वाक्य शब्द से भरा हुआ। तो वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य, वैदिक वाङ्मय शब्द अर्थात वैदिक शास्त्र, लोके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कौन सा श्लोक? वेदेश्च सर्वै अहम् अभिवद्ध, वस्तुतः भगवान के जशगान वेदो रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का जशगान हुआ है। अतः जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छत पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनके बातें वैदिक स्तोत्र से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौरीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के गीत इन गीतों के वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है कि इनका विषय वस्तु, गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के कहा भगवत धाम जाने के लिए क्या कितना मूल्य देना पड़ेगा, बोले दो पैसा। बोले क्यों? बोले नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रार्थना जो पुस्तक लगा उसी टाइम दाम कम था, प्रार्थना पुस्तक का कीमत था दो पैसा, वो दो पैसे से वो पुस्तक खरीद कर पढ़ो, बस भगवत धाम चले जाओगे। तो यहाँ आए उसका विषय वस्तु किया है, भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु का महत्व है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्य में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना की विकास हो आया था। अतः भले ही वो स्त्री संस्कृत का अच्छी विद्वान न रही हो, तो भी उनकी बात वैदिक स्तोत्र की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। क्यों? क्योंकि उपनिषद में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं। कभी कभी उपनिषद भगवान को परोक्ष रूप में व्याख्या करते थे। भगवान भगवत गीता का 12:3 क्या निराकार ब्रह्म को व्याख्या करने दीजिए, किसने क्या बोलता है ना, वो तो 5:3 अक्षरम निर्विषम, क्या अव्यक्तम निर्विषम कुटस्थम, 3 नहीं असल नहीं, 12:3 3-4 जेतु अक्षरम अनिर्दिष्टम। तो वहा अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना, जे साकार निराकार के अंदर कौन सा अच्छा है, 1 श्लोक में। 2 श्लोक में किसने क्या बोला, आपको यदि बोलेंगे ये 2 रास्ता है, कौन सा रास्ता दिल्ली जा सकते, ये रास्ते में जाओगे 2 घंटा चले जा सकते, लेकिन ये रास्ते में जा सकते 3-4 महीने लगेगा, रास्ता में नदी वन वगैरह बहुत है, पता नहीं नाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जा सकते। इसका अर्थ क्या है, कौन रास्ते में जाने के लिए बोल रहा है। तो उसी तरह जब बोले साकार के निराकार, तो 2 श्लोक में क्या बताया ना, 2 मोई अवश्य मनोजिमान, डायरेक्ट बोल दे जो मैं कृष्ण हूं, मेरा पूजा करो, बस ये रास्ता डायरेक्ट है। लेकिन तू शब्द अर्थात क्या है, तू किंतु, अभी 9 बजे प्रसाद है, मैं जो बोलूंगा किंतु तो सबको डाउट होगा, सर्वनाश क्या मुश्किल है, क्या इसकी फास्टिंग चल रहा है क्या, किंतु होने से थोड़ा कुछ है उधर में। तो इसलिए 3 श्लोक में क्या आता है, जे तू, लेकिन है इसके अंदर, उसका डायरेक्ट नहीं है, जे तू अक्षरम अनिर्दिष्टम। तो यह भगवान को क्या रूप में वर्णन कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप में, निराकार को अप्रत्यक्ष रूप में, तो यह भी भगवान के है वर्णन है। तो यह पूर्वाद ही बोलता है, उपनिषद में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों के बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। ये स्त्री के बात में आपस में कपड़े, किसने हमारे साथ खेल किया, ये अभी गाय चरण के जाया, युद्ध किया, जो डायरेक्ट, इसके अंदर कुछ अप्रत्यक्ष बातें नहीं। अतः वे अधिक हृदय ग्राही थी। ग्राही शब्द अर्थ क्या, ग्राही पानी, ग्राही ग्रहण शब्द, हृदय हृदय से ग्रहण करने लायक, हृदय ग्राही थी। स्त्रियों के बातें विद्वान ब्राह्मण के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान लग रहे थे। यह भी पूर्वाद लास्ट में क्या खड़ा, स्त्री के बातें विद्वान ब्राह्मण के आशीर्वाद से, विद्वान ब्राह्मण किसी का आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, शतपुत्र जननी भव, इस तरह आशीर्वाद देते हैं। लेकिन स्त्री के बातें विद्वान ब्राह्मण आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान लग रही थी। क्यों, विद्वान ब्राह्मण क्या दे सकते, चिरंजीवी भव, शतपुत्र जननी भव, स्वर्गलाभ, लेकिन वो विद्वान ब्राह्मण क्या आशीर्वाद दे सकते, बहुत ही जगत का सुख, लेकिन आपस में ये महिला का बात सुनकर भगवत धाम जा सकते हैं, तो कौन सा मूल्यवान है, कौन सा सुनना चाहिए, ब्राह्मण के पास आशीर्वाद लेना चाहिए कि महिला का बात सुनना चाहिए। तो ये कितना सुंदर जो श्लोक प्रभुपाद की व्याख्या है, क्या बोले श्लोक पढ़ेंगे, अरे इसके अंदर है क्या, ये जशोदा माँ को बोला तुम्हारे लाला नंदन ये चामिल घूर रहे हैं, गाँव में घूर रहे हैं, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, हम काहे नहीं किया है। लेकिन आचार्यों के दृष्टि में देखना चाहिए, प्रभुपाद यह क्या बोलना चाहते, यह सुनकर हमें क्या होगा, भगवान प्रति आसक्ति बढ़ेगा, और आसक्ति से क्या होगा, भौतिक जगत का अनासक्ति आएगा, जो जीवन का लक्ष्य है। और यह प्रभुपाद ने तात्पर्य कहा, हमारे पूर्वतन आचार्य नहीं, खास करके नरोत्तम दास ठाकुर आदि जो गान लिखा है, ये है वैदिक उस तरह मंत्र की तरह ही बराबर है। नरोत्तम दास ठाकुर आदि जो आचार्य जो गान लिखा है कितना शक्तिशाली है, हृदय को पिघल देते हैं। केवल यह नरोत्तम दास ठाकुर का बात लिखा है, हमारे पूर्वतन आचार्य सबका ही है। ये भजन कोई साधारण कोई केवल गाने नहीं है, ये गान हम हरे कृष्ण महामंत्र से किसी को तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये भजन भी सरस्वती भगवान का प्रेम भक्ति वृद्धि कराते हैं। यहाँ पर जो ये अध्याय का नाम है गोपियों का जो गीत गायन कर रहे, तो ये गीत गान जब गान कब कर रहा है, यदि कोई एक बच्चा सामने बैठा है उनको बुलाएंगे कोई माँ नहीं बोले, तो सामने बैठे बातें करेंगे, लेकिन बुलाते कब, जब सामने नहीं है तब तो बुलाते हैं। तो इसी तरह जब एक गान गा रहा है अर्थात कृष्ण का इधर में नहीं है, लेकिन वास्तव में तो है तो है ही, लेकिन उसका अनुभव हो रहा है इधर में नहीं, अर्थात ये जो गान गा रहा है ये किसका लक्षण है, विरह का चरम लक्षण है। दो प्रकार जो भगवान के जो सुख है, संभोग और विप्रलम्भ, संभोग में सामने जाए तो उनको तो बुलाना जरूरत नहीं होता है, लेकिन विप्रलम्भ जब गान बुलाते हैं तो जो व्यक्ति हमारे समन में है लेकिन उनका हम प्रेम करते कि नहीं करते कोई गारंटी नहीं है। जो पत्नी उनका स्वामी को खाना परोस कर रहा है, पता नहीं उनका दूसरा पुरुष का संपर्क है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विरह में दूर से जिसका फुकर रहा है तो उनके प्रति कितना प्रेम है। इसलिए संभोग से विप्रलम्भ में कोई गुण अधिक है। तो जब यह गान गा रहे हैं अर्थात ये भगवान का प्रेम का सर्वश्रेष्ठ स्तर है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमको वो चीज दी, सर्वोच्च चीज है। लेकिन जब हम ये हम श्लोक पढ़ रहा था, ये दो श्लोक, तब सब लग रहा है कब खत्म होगा भाई, ये संस्कृत श्लोक है, तो इस तरह श्लोक उच्चारण कर हो सकता है हमारे लिए कठिन है, लेकिन श्लोक पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत सरल श्लोक दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इतना सरल है, कल सरल नहीं है। बंगाली सोचते हैं हमारे बांग्ला भाषा का श्लोक है, हिंदी भाषी सोचते हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी भाषी सोचते अंग्रेजी भाषा का श्लोक है, तमिल तेलुगु कोई भी भाषा भाषी सोचते भाई हमारे भाषा का श्लोक है। किसी को श्लोक पढ़ने याद करने से लाग नहीं, हम दूसरा भाषा क्यों सीखेंगे, और याद करना तो सबसे सरल है, और इसको अंदर कोई भी ट्यून में गा सकते, क्या चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, और इतना सरल इतना सुंदर, और इसके रिजल्ट क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ भाव भगवान का विरह में जो भावना आते हैं, विप्रलम्भ जो भावना है, वो भावना का चरम फल इसके अंदर देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु यही हमको सिखाने के लाए थे। चैतन्य चैतन्य अंतलीला में कविराज गोस्वामी वर्णन करता है, श्री राधार भाव जैसे उद्धव दर्शने सेई मतो उन्माद चेष्टा करे रात्रि दिने। राधा नहीं तो सब समय कृष्ण का विरह में उन्मादिनी थी, पागलिनी थी, लेकिन खास करके जब उद्धव आए तब उनका वो भावना कोई हजार गुण वृद्धि हुई। तो राधा रानी के वो भावना हमेशा नहीं थी, जब उद्धव आया तब हजार गुण वृद्धि हुई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो भाव में हमेशा ही रहते। तो चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक है, जब भगवान कोई रोल प्ले करेगा तो बढ़िया से बढ़िया तो होगा ही, तो भगवान स्वयं राधारानी को अभिनय करने के लिए, तो राधारानी को हराना चाहिए ये रोल में। तो इसीलिए उन्होंने वो ভাব নেই, সেই মতো উন্মাদ চেষ্টা করে রাতে দিন রাত মহাপ্রভু রাধারণী কা ভাব নাম বিরামে রাতে। আর কেবল উনি একেলে নেই, সব ভক্ত কো এ সদ আস্বাদন করি উনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে আমি দিয়া হ্যাঁ হম বহুত ভাগ্যশালী হ্যাঁ। আর বিশেষ করে শিল প্রভুপাত কৃপা সে সারে জগত মে এতনা বিস্তার হওয়া হ্যাঁ, জিসক মাধ্যম সারা জগৎকে কতনা মঙ্গল হা হ্যাঁ। তো এ শ্রীমদ ভাগবত আদি ইতনা গ্রন্থ পড়কে আমি দেখ যো শিক্ষা হ্যাঁ শিল প্রভুপাত সব দে চুকা হ্যাঁ, আলাগ করকে ঢুঁড়ে কাজ জায়গা জরুরত নেই হ্যাঁ। কেবল যদি নিরাপরাধ রূপ সে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন সব কুছ মিল যায়গা, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম শিল প্রভুপাত কি জয়। মন মন ভক্ত হয় কিস কমেন্ট আপ লোক
হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ মহারাজ, বহুত বহুত সাল কে বাদ আতে রইয়ে। শ্লোক মে উপদেব করকে লিখা হ্যাঁ বিশ্বনাথ চক্র ঠাকুর, আর এক সন্দর্ভ মে লিখতে হ্যাঁ কি জব ভগবান কৃষ্ণ গোচারণ লীলা করকে আতে হ্যাঁ উস সময় বীচ মে সব ডেমিগডস আকে প্রার্থনা করতে রহতে হ্যাঁ, কিসি কো চার হেড হ্যাঁ, কিসি কো পাঁচ হেড হ্যাঁ, কিসি কো সহস্র অক্ষ হ্যাঁ, বিচিত্র বহুত বিচিত্র দিখনে লায়ক হ্যাঁ। ফির ও লোক সংস্কৃত মে কুছ বোল কে যাতে হ্যাঁ, আর গোয়াল বালক কো আশ্চর্য হতে কৌন হ্যাঁ, এ লোক ও লোক মালুম নেই পড়তা হ্যাঁ উসকো কৌন হ্যাঁ দেব দেব। ফির ও লোক আকে নকল করতে হ্যাঁ ये डेमिगॉड्स का ऐसा बोला है वैसा बोला है ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है ऐसे दे डोंट केयर
उसका वो बच्चे लोग का कोई मूल्य नहीं है उनका बहुत सुंदर। और कोई माइक
हरे कृष्ण महाराज दंडत प्रणाम। महाराज जो भक्त तीन प्रकार का होता है, साधन भक्त, साधन सिद्धि, कृपा सिद्धि, नित्य सिद्ध। तो इस भयंकर कलिजुग में जो प्रभुपाद जी हमको जो बताए हैं प्रिंसिपल उसको हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि गोल पाना थोड़ा कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाता है। तो हम सोचते हैं कृपा चाहिए गुरु का वैष्णव का, तो ये दोनों में बैलेंस कैसा हमको पता माने हो सकता है रख सकते हैं, क्योंकि गोपियां तो नित्य सिद्ध हैं तो हम तो अभी साधन भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा मतलब कि कृपा ही सब कुछ है, लेकिन अगर साधन भी तो जरूरी है भक्ति, तो कैसा हम जान सकते कि हमारा भक्ति में दोनों का जरूरी है, अच्छे से समझा दीजिए।
हरे कृष्ण। तो दो प्रकार जी मुक्त और बद्ध। मुक्त जो है वो नित्य मुक्त है, वह उनको नित्य सिद्ध कहता है। सिद्ध शब्द अर्थात है सिद्ध अर्थात है जिसका राय सिद्ध हो गया, इसका अर्थ क्या जो हम चाहना है वो मिल गया है। सिद्ध शब्द अर्थात है लक्ष्य वस्तु प्राप्त करना। तो जीवन का सिद्धि है भगवान का सेवा करना, भगवत धाम जाना। तो जो नित्य काल में वो सेवा करके आ रहा है वो नित्य सिद्ध है, वो भौतिक जगत के बारे कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन ये भौतिक जगत में जो आया है तो वहां जो सिद्धि दो प्रकार, एक कृपा के माध्यम और खुद का साधना के माध्यम। साधना के माध्यम कोई सिद्धि लाभ करता है, कोई कृपा के माध्यम सिद्धि लाभ करते हैं। तो ये प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर गल्प कहा है, मार्जान न्याय मरकट न्याय, सबको पता है कहानी। মার্জার অর্থাৎ बिल्ली और मरकट अर्थात बंदर। तो मार्जार बिल्ली उनके बच्चा को कंधा पकड़ करके एक जगह ले जाते हैं, अर्थात बच्चा संपूर्ण रूप में माँ का कृपा के ऊपर निर्भरशील है। वो बच्चा है बिल्ली के बच्चा है कृपा सिद्ध है, और बंदर के बच्चा माँ देखती नहीं बच्चा, लेकिन बच्चा पकड़ करके माँ एक पेड़ से दूसरे सलंग लगाते हैं, उसे खुद के चेष्टा से पकड़ नहीं, बच्चा छोड़ देगा तो मर जाएगा। तो उनका सिद्धि कैसे है, उसका है साधना के माध्यम। तो साधना के माध्यम इस तरह जो भक्ति खुद का साधना से करना से साधन सिद्ध, और खुद का गुरु वैष्णव कृपा से कृपा सिद्ध। तो प्रभुपाद कहते हैं हम तो बंदर का बच्चा नहीं, बिल्ली का बच्चा नहीं है, हम मनुष्य का बच्चा है। हमारी स्थिति है हम कुआ के अंदर गिर गया है। जब कुआ के अंदर गिर गया है तो हमें दो प्रकार मदद चाहिए, कोई आके रस्सी गिरा दे और नीचे से हमको पकड़ना पड़ेगा, दोनों जरूरत है। जो रस्सी गिरा दे वो है कृपा, वो हमें पकड़ना है साधना है। तो दोनों तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा हमें तो साधना जितना शक्ति करना चाहिए, लेकिन कृपा को ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिस तरह एक बच्चा सारा साल पढ़ाई करते हैं जरूर, लेकिन टीचर का कृपा को भरोसा करते हैं, टीचर सर हमको मार्क ज्यादा देना, पढ़ाई करते हैं भगवान परीक्षा समय में बीमार भी नहीं हो जाए, मेरा पेपर किसी चेंज नहीं हो जाए, पढ़ते तो जरूर पूरा ताकत लगा पढ़ते हैं, फिर भी भगवान के पास शिक्षक प्रार्थना वह तो की कृपा चाहता है कि कुछ भी नहीं लिखोगे भी 100 मार्क देना मुझको। तो हमें हमारे तरफ से पूरा प्रयास, और साथ साथ ये भी सोचेंगे हमारे प्रयास कोई काम का नहीं है, भगवान का कृपा से। आचार्य गान लिखते हैं, हे भगवान हे वैष्णव ठाकुर, आप यदि मेरा गुण विचार करना चाहते हैं एक भी मिलेगा नहीं, गारंटी दे रहा हूं, और यदि दोष ढूंढना चाहते हैं आप गिनती करके खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरह डिस्कशन क्लोज करना चाहिए, आपको मुझको अहेतु की कृपा करना चाहिए, मेरा की गुण क्या दोष वो नहीं देखकर आप मुझको अहेतु की कृपा करना है, यह है हमारे मनोभाव। इस तरह नहीं हम प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे लेकिन गुरु वैष्णव के ऊपर संपूर्ण कृपा करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं मो सम पतित प्रभु ना पाई वे आरो, मन से भावना हमारे प्रयास से कुछ हुआ नहीं, हमें जो कुछ आज तक जो कुछ हुआ है क्या लग रहा है हमारे चेष्टा से हुआ, आज प्रभुपाद इसको नहीं बनाते थे क्या हम भक्ति कर पाते थे, लग रहा है हम कितना भक्ति कर रहे हैं, हम सुबह 3 बजे उठते हैं पता नहीं चलता किसकी लेकर है, मैं जब इस्कॉन में ज्वाइन किया हमें 2:45 उठता था, लग रहा है मैं कितना बड़ा भक्त बन गया। 1 साल बाद एक बार घर में गया था, नेक्स्ट दिन 5 बजे उठा, 1 साल का साधना एक दिन में खत्म। तो अभी जो हम कर रहा है सुबह सुबह उठ रहा है शलमाला कर रहा है इतना किस कर रहा है, बस में प्रभुपाद इस्कॉन बना है उनका कृपा से चल रहा है, हमारे चेष्टा से नहीं होगा, इसलिए वैष्णव का कृपा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ठीक है ओके, मैं 2 दिन पहले क्लास सुन रहा था वीरद भागवत से महाराज क्लास दे रहे थे, आप लोग कितना अच्छा अच्छा डिस्कशन कर रहा था।
हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी कभी भी भागवतम क्लास में रासलीला का वर्णन नहीं, रासलीला के बारे में नहीं बताए, और लेकिन उन्होंने बोला कि भागवतम के 12 स्कंद में से पहले से लेकर पहले 9 स्कंद पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद में 10वें स्कंद में प्रवेश करके उसे पढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और फिर उन्होंने कृपा करके कृष्ण बुक लिखा है वो बिल्कुल सरलतम भाषा में है, और बहुत ज्यादा विद्वान नहीं होने पर भी भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन का जो चरित्र है वो समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हाँ प्रभुपाद का बहुत बड़ा गिफ्ट है, थैंक यू। तो ओके हाँ
हरे कृष्ण। प्रभु जी का भक्तिचर महाराज हमेशा बोलते थे कि नेवर लीव इस्कॉन, नेवर लीव इस्कॉन, क्योंकि हम जब इस्कॉन में हम जब ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद कुछ थोड़ा स्ट्रगल होता है वो तो, क्योंकि कंटेमिनेशन बहुत है, लेकिन हम इस्कॉन में रह जाएंगे ना कोई भक्त हमको संभालेगा और लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा। ऐसा बहुत सारे केसेस हुआ था कि ज्यादा प्रैक्टिस अच्छा प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था, लेकिन डिवोटी लोग जाके कीर्तन करते हैं और हरि कीर्तन सुनते सुनते शरीर त्याग करता है और उनका लाइफ परफेक्ट हो जाता है। इसलिए गौर गोविंद महाराज हमेशा बोलते हैं कि कलयुग में साधन सिद्धा कोई नहीं हो सकता है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस्कॉन में रहेंगे, कृपा डिवोटीज का कृपा मिलेगी, इसलिए नेवर लीव इस्कॉन।
हरे कृष्ण। कभी देखा जाता है बाहर के दुनिया में लोग आपस में कुत्ता बिल्ली जैसे झगड़ते हैं और शांति नहीं रहते उनके पास, और फिर कभी ऐसा भी देखा जाता है मंदिर में भी भक्त लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं और कभी वैष्णव अपराध हो जाता है, तो ये भक्तों के साथ रहना भी मुश्किल है और उनको छोड़ के जाना भी मुश्किल है। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद कहते हैं इट्स डिफिकल्ट बट बाहर में रहना इम्पॉसिबल। भक्त के साथ रहना कठिन है लेकिन अभक्त के साथ रहना असंभव है। जहाज में समुद्र में जहाज चलते हैं हिलते हैं जरूर लेकिन छलांग नहीं लगाना है, छलांग लगे तो जल्दी मरेगा। हरे कृष्ण। गंधराज श्रीमद् भागवत। और एक क्वेश्चन है,
महाराज जी आपने जैसे बोला कि जो इसमें इसमें भी आता है कि जो गोपियों की स्तुति है वो वैदिक मंत्रों से ज्यादा श्रेष्ठ है, बेटर है, तो फिर क्यों इतना शास्त्रों में ज्यादातर वैदिक मंत्रों पे फोकस किया जाता है, बल्कि जो गोपी स्तुति है और जो जो देव जो द्वारका ईरानी स्तुति है वो बाद में आता है, तो फर्स्ट पहले वो बताया जाता है वैदिक मंत्रों में ज्यादा फोकस क्यों होता है।
प्रश्न है ये मंत्र ये गोपी का जो चर्चा है वैदिक मंत्र से श्रेष्ठ है, तो पहले यह क्यों सिखाते नहीं है। वास्तव में वो नहीं समझेगा तो जिस तरह वैदिक मंत्र के माध्यम कृष्ण भगवान है ये चीज नहीं समझेंगे, उसके पहले इस तरह चर्चा करेंगे तो एक जुगुक जुगुते लड़का लड़की का है तेरा कहीं नहीं लगेगा। जब कृष्ण के भगवान नहीं समझेंगे तो इस तरह बात को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले समझना चाहिए कृष्ण भगवान है। लेकिन कलयुग के आदमी इतना समझ नहीं था, इसीलिए प्रभुपाद ने चैतन्य महापुरुष सरल कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र कर इसके अंदर सब कुछ है। जिसे भगवत गीता क्या स्थापन करते कृष्ण भगवान है, तो जब हम समझते कृष्ण भगवान है तब कृष्ण का लीला अच्छा लगता है। जब कृष्ण भगवान नहीं है तब कहानी सुनेंगे तब अरे कृष्ण माखन चोरी किया, हम दूसरा घर माखन चोरी कर सकते, समस्या क्या है। लेकिन जब किसी बोल रहे अरे कृष्ण कल माखन चोरी किया नहीं है, वो गोवर्धन धारण किया भाई, पहले कोशिश करेंगे गोवर्धन धारण करें उसके बाद माखन चोरी करने जाएंगे। इसीलिए शास्त्र से पहले कृष्ण भगवान है ये जानना बहुत आवश्यक है, तब ये चीज समझना जी हो। हरे कृष्ण। शिल्पोपात की और क्वेश्चन है। ओके, और दो मिनट है।
हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे आपने वो भगवद्गीता का जो श्लोक कोट किया जिसमें निराकारवादी या साकारवादी कौन सा श्रेष्ठ पथ है, तो भगवान कृष्ण इतना क्लियरली बोल रहे हैं कि साकारवादी का पथ कितना श्रेष्ठ है, पर फिर भी मायावाद इस बारे में क्या कहते हैं, इस श्लोकों के बारे में क्या कहते हैं।
प्रश्न है इतना परिष्कार पड़े उसके मायावादी क्या कहते हैं। मायावादी का जाना जरूरत नहीं है, दूसरा को पूछना नहीं है, हमको खुद को पूछ लीजिए। हम सुना है हरिनाम करने से सब कुछ होता है, क्या हम निरंतर हरिनाम कर रहे हैं? कर रहे हैं, निरंतर हरिनाम कर रहे हैं, फिर दूसरे इधर उधर कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। माओवादी को निंदा करना जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में हम क्या सुना है? कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, हरिनाम करने से सब कुछ मिलेगा। क्या हम निरंतर हरिनाम कर पा रहे हैं? क्यों नहीं पा रहा है? इसको उत्तर क्या है? दुर्भाग्य है। तो ये आपको जो प्रश्न है, इतना परिष्कार लगा क्यों नहीं समझ में आता है? इसका कारण है, जब तक गुरु वैष्णव का कृपा नहीं होगा नहीं समझेगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप धाम महात्म में बहुत सुंदर करके इसको वर्णना दिया है। माया देवी ने इस तरह व्यक्ति जो अभक्त है उनको सामने में दो प्रकार पर्दा दिया है। एक पर्दा से इस तरह भक्तिमूलक ग्रंथ दूर रख दिया, वो पढ़ेगा नहीं, और जो दो चार पढ़ेगा गीता के द्वारा, वो पढ़ने के टाइम उनका आंखों में एक पर्दा लगा देता है, पढ़ने के बाद समझेगा नहीं। लेकिन जब साधु का कृपा होगा, साधु का कृपा से उनके हृदय में सेवा भावना उदय होगा, तभी केवल माया हट जाएगा, तभी समझ में आ जाएगा। ये मायावादी के बात नहीं है, हमारे जीवन में हम इसको ने आने के पहले भी भगवत गीता पढ़ता था बहुत आदमी, तब क्या समझ में आता था, अब क्या समझ में आ रहा है? क्यों? प्रभुपाद का कृपा से। इसकर में आगे प्रसाद कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, साधु का सेवा कर रहा है, इसीलिए धीरे धीरे अभी लग रहा है। गीता में स्पष्ट लिखा है, फिर भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो आपको पूछ के देखे, आप इसकर में आके पहले आप ही गीता पढ़ रहा था तो तब की समझ में आया था क्या? नहीं आया था। तो ये साधु वैष्णव का कृपा चाहिए, इसीलिए इसकन का भक्त लोग ज्यादा से प्रचार करते हैं। प्रचार अर्थात वो मायावादी को कृपा करना है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राज बिहारी ललित अभिषेक जी की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की, पतित पावन गौर निताय की, सावित गौर भक्त गौर प्रेमानंद जी।